ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के दसवां अध्याय के 10 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। शब्दार्थ ओम हे भगवान, नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ भगवते परम पुरुषों को, तुभ्यम तुम्हें, पुरुषाय परम पुरुष को, महात्मने परमात्मा को, हरये भक्तों के समस्त दुखों को हरने वाले, अद्भुत सिंहाय आपके अद्भुत सिंह रूप नरसिंह रूप को, ब्रह्मणे परम ब्रह्म को, परमात्मने परमात्मा को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे षड ऐश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बतलाया कि भक्त भगवत्व को प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने दास पद को खो देता है। भगवान के शुद्ध दास को भले ही वह भगवान के ही समान ऐश्वर्य क्यों न हो, भगवान को सादर नमस्कार करना होता है। प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करने में लगे थे, अतः वे अपने को भगवान के तुल्य नहीं मान रहे थे। उन्होंने अपनी स्थिति दास रूप में बतलाई और उन्हें सादर नमस्कार किया। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो जो आज पहली बार आए क्लास में, मैं भी खुद पहली बार आया हूँ इतने दिन के बाद, तो पूर्वापर प्रसंग थोड़ा पूर्व प्रसंग बताना चाहिए। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज ने जो 9वां अध्याय में स्तुति किए, उसके बाद उन 10वां अध्याय में भगवान ने खुश होकर के प्रहलाद महाराज को कुछ वर देना चाहा। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान की इसी वर देने के इच्छा को आदर तो किए, लेकिन बोले प्रभु मुझे वर अब क्या चाहिए, सबसे बड़ा वर तो मुझे मिल ही गया, जो ब्रह्मा शिव कवि दुर्लभ आपकी श्री अभय कर कमल मुझे स्पर्श मिला, आपके प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, तो उससे बढ़कर मुझे और क्या वर चाहिए, मुझे और कुछ वर नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ। नरसिंह भगवान बोले अरे कुछ ना कुछ तो ले लो, मैं आया हूँ वरदान, मैं राजा हूँ, वरदराज हूँ, कुछ तो ले लो। तो कुछ लेने के लिए नाना प्रकार की भौतिक बोले जो चाहे ले लो, भुक्ति मुक्ति इंद्र पद ये ब्रह्म पद कोई बड़ा पद कोई ले लो। तो प्रहलाद महाराज बोले प्रभु इस प्रकार मैं आपके स्तुति किया भक्ति किया, अगर उस लेन देन के ऊपर तो बिजनेसमैन हो जाएगा, सब वणिक मैं व्यापारी नहीं हूँ, तो कृपया मुझे इस प्रकार प्रलोभन मत दिखाइए, मैं आपको स्तुति करके आपसे कुछ लूँ। बोले जो प्रभु से सेवा करके स्तुति करके प्रश्न करके कुछ उसके बदले में कुछ चाहता है भौतिक लाभ, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। और वो प्रभु भी अपने भक्तों से अपने बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा चाह कर उसको देना चाहता है, वो प्रभु भी नहीं हो सकता। ये प्रभुपन और दासपन वृत्तिपन को उन्होंने नकार दिए। तो भगवान बोले अरे मेरा बदनाम होगा, कुछ तो लो, मैं आया देने के लिए तेरे सामने प्रकट हुआ। तो फिर भगवान बोले नरसिंह देव के ये बात सुन करके प्रहलाद महाराज बोले प्रभु अगर आप कुछ देने में तुले हुए हैं को देना चाहते तो फिर मेरा एक ही मांग है आपसे, ना क्या ना आप मुझे ये वरदान दीजिए ताकि मेरा हृदय में कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। हाँ मेरे विवाह में काम कोई इच्छा जो भोग प्राप्ति का कुछ पोस्ट पोजिशन लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा ही उत्पन्न ही ना हो, वो खत्म हो जाए। अद्भुत ही वर मांगे और कहे कि अगर किसी कमन में ये जो सो काम भोग आदि जो इच्छा है, यही इच्छा ही मूल कारण है जावतीय धर्म जावतीय सब अच्छे गुण को नष्ट करने वाले, सब नष्ट कर देगा, विनाश करने वाले हैं। ये कामना ही सबके मूल विनाशक बीज है, तो इसलिए मेरे हृदय में ना आया। जब इस प्रकार बोले और यहाँ तक भी कहे कि कोई भक्त के हृदय में अपने भजन के प्रयास से अगर इस काम विनाश हो जाए, किसी प्राप्ति की इच्छा भोग प्राप्ति की इच्छा समूल नाश हो जाए, किसी प्रकार के इंद्रिय सुख नहीं चाहता है, तो वो भगवान की तुल्य बन जाता है, भगवत तत्व भगवनमय प्राप्त हो जाता है वो भगवान की कृपा से भगवत गुण को भगवत भगवत धर्म में धर्मित हो जाता है। तो आज के श्लोक में ऐसे मानो नरसिंह भगवान कहेंगे अरे प्रहलाद तू बड़ी बड़ी बात करता है, मेरा सायुज्य आदि मुक्ति को बड़े बड़े महात्मा परम पुरुष मुनिगण आत्माराम मुनिगण भी उसको प्रशंसा करते हैं और आप एक छोटा सा असुर बालक हो, मैं पढ़े लिख भी नहीं हूँ, तो मास्टर लोग तूने स्कूल से रेस्टिगेट कर दिए थे, नाम कहे तूने, तू इतने कटाख्या कर रहा है मेरे दान कर मुक्ति को, ऐसे क्रिटिसाइज करता है तूने। इस प्रकार के उक्ति मानो भगवत उक्ति होगा तो इस बारे में प्रहलाद महाराज भगवान के सामने और क्या कहेंगे, अपने को दास के रूप में पराजित मान करके इस श्लोक को कहते हैं अंत में, बस इसी इति करते हैं, बोले प्रभु बस मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको कुल प्रणाम करना चाहता हूँ, आप जो करना है कीजिए, मैं तो बस आपके साथ नहीं। तो इसलिए ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने, हे महान पुरुष, हे साक्षात भगवान श्री सूर्यपुर भगवान, अब आप जो अद्भुत नरसिंह रूप धारण करके आए हैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो समस्त प्राणियों के समस्त प्रकार दुखों को नाश करने वाले है, एक दुख नाशक अद्भुत नरसिंह रूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सचमुच मानव प्रहलाद महाराज इतने लंबा स्तुति भगवान के साथ में बातचीत ये सब करने के बाद में अंततः एक भक्त को भगवान के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है, ये श्लोक मंग बताते हैं कि हम केवल ही लायक हैं, हमारा लायकात है हमारे पास में भगवान को प्रणाम भर कर सकते हैं बस, बाकी तो सब उन्हीं का ही है। भगवान हमसे अपना इच्छा से हम उनको समर्पण करें ही आशा करते हैं, तो ही समर्पणत्व को भगवान की शुरुआत होता है प्रणाम से, भगवान को प्रणाम से। हम भगवान के दास हैं, हमारा धर्म यही है, कर्म यही है, भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते तुभ्यम, इस प्रकार से भगवान श्री नरसिंह रूप को अंतर से सादर से उनके प्रसन्नता पूर्व प्रणाम अर्पण करते हैं, और उसके बाद में एंड, उसके बाद भगवान फिर कहना चालू करेंगे। तो ही एक भक्त अंत में भगवान को प्रणाम ही भर कर सकता है, बाकी क्या है, हम कुछ क्या कर सकते हैं उनको। और प्रहलाद महाराज तो एक छोटे असुर बालक की रोल कर रहे थे, उनके सामने बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता खड़े थे, हाथ जोड़ के पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से, भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद छोटे बालक वो नरसिंह भगवान को अपने स्तुति से शांत कर दिए, अशांत नरसिंह को शांत कर दिए, उनको प्रसन्न कर दिए। और शांत के सबसे फाइनल जो डोज है वो है प्रणाम, अंततः प्रणाम करना चाहिए, तो इसलिए प्रणाम करते हैं विशेष रूप से। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय, तो नरसिंह अद्भुत नरसिंह रूप प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के सब प्रकार के दुख को नाश करने वाला, तो मेरे अंदर जो भी दुख सब हर लेंगे अपने दुख हरा। हरि शब्द, महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द तो सब हरण करने वाले हैं, क्या हरण करते हैं, सर्व दुख हरे प्रेम दिया हरे मन, बोले मन भी हरण करते हैं प्रेम को दे करके। तो ये हरि की विशेषता है, ये हरि को हम और क्या कर सकते हैं, हमारे पास है क्या, केवल प्रणाम ही कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये क्या देते हैं, तो आज एक माघ शुक्ल नवमी तिथि है, हमारा वैष्णव पंजिका में श्रीमान माध्वाचार्य की तिरुभाव तिथि है, और हमारा ये संप्रदाय है ये माध्व संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा से तो है, ब्रह्मा के बाद नारद, उसके बाद व्यास, उसके बाद माध्व, इस परंपरा कढ़ी हम लोग के हैं। तो आज हमारे इस धरती पर जो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तन किए ऐसे महान आचार्य श्रीमान मध्वाचार्य के तिरुभाव, तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही अनाउंसमेंट किया गया था भागवत प्लस, तो मैं बोला कि पूरा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भागवत बोलते नहीं तो इसलिए थोड़ा ये थोड़ा वो। तो माध्वाचार्य के प्राकट्य के विषय में ऐसे कहा गया है कि एक ऐसे समय था आज से लगभग 1000 साल के करीब पहले, जिस समय ये शंकरवाद जो निर्विशेषवाद मायावाद का बौद्ध धर्म और निर्विशेष धर्म का बहुत प्रबल प्रचार हुआ था, जो वैष्णवगण थे वो कहाँ कहाँ उनके तर्क से छिप कर कहाँ व्यतीत करते थे और बहुत कमी रह गए थे। तो इस प्रकार के दशा को देख करके मानव लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन देवता लोग सोचने लगे, देवता लोग बोले ये बड़े अशांति इस प्रकार के सब शुरुआत फैल रहा है, तो जाकर उन्होंने ब्रह्मा के पास पहुंचे, बोले इसे इसे पूरे पृथ्वी में इस प्रकार के शून्यवाद विशेषवाद के प्रबल प्रचार हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोले चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो कुछ करेंगे। तो भगवान के पास जब जाकर प्रार्थना करे से देवता ब्रह्मा जी मिल करके, तो भगवान ने बोले ठीक है, ये चतुर्थ युग जो है, कलयुग में भगवान का साक्षात अवतार नहीं होता, इसलिए भगवान को त्रियुगी कहते हैं, ठीक है, तो किसको मैंने भेजूंगा, जो जाकर के मेरे बारे में थोड़ा प्रचार करके आए जाकर बात को। तो ने देवताओं की ओर दृष्टि किया, हु इज फिट कैंडिडेट, कौन उपयुक्त है देवताओं में जो जाएगा मेरे ओर से अन बिहाफ ऑफ मी। तो वायुदेव के ऊपर नजर पड़ा भगवान की, भगवान मुस्कुराते हुए वायुदेव की ओर देखे, बोले हे वायुदेव तुम मेरे ओर से जाओ। तो उनको आशीर्वाद दिए। तो वायुदेव भगवत आज्ञा से भगवत भक्ति के प्रचार करने के लिए वो अवतरित हुए। ऐसे कहा गया कि वायु देव अपने पुत्र के रूप में हनुमान के रूप प्रकट हुए थे और ये फिर माधवाचार्य के रूप प्रकट हुए। उनका प्रकट क्षेत्र है कर्नाटक में, उडुपी से थोड़ी ही दूर पाचपा क्षेत्र है, जहाँ पे माधव गह भट्ट बड़े कुलीन ब्राह्मण थे, उनके वेदवती उनके माँ उनके पत्नी के नाम थी। तो इस क्षेत्र में उन्होंने प्रकट हुए। प्रकट होते समय में ही सभी शुभ लक्षण प्रकटित हुआ था, क्योंकि तो साक्षात वायुदेव उनको मुख्य प्राण कहते हैं। वायु वही है हमारा समस्त प्राणियों के बीच में जो प्राण के रूप में जो प्राण वायु है वही मुख्य प्राण। तो ही माधवाचार्य के रूप में प्रकट हुए सब शुभ लक्षण होकर के, और चंद्रकला के समान बढ़ने लगे। उनके पिता माता ने अनेक अनंतेश्वर की पूजा करके, बहुत भगवान शंकर की पूजा करके, प्रार्थना करके उनको प्राप्त किए थे। तो उन्होंने अपने बचपन से ही अद्भुत कर्म प्रकट किए थे। ऐसे उनकी लीला में देखा गया है, जब वो छोटे बालक थे तभी उनके पिताजी ब्राह्मण लोग जानते हैं, जो पहले जन्म जो सही ब्राह्मण है कुछ कामदाम नहीं करते हैं, पठन पाठन यजन याजन यही उनका कार्य है, दान दक्षिणा लेकर पूजा पूजा के लिए काम चलाते हैं। तो कुछ विशेष काम के लिए कुछ धन के अभाव था, किसे धन कर्ज लिए थे, उधार लिए थे, और वो जो उनका महाजन है जो धन दिया था वो बार बार आता था मांगने के लिए, उनका उस पैसा था नहीं। एक दिन उन्होंने आकर के उनके घर के सामने बैठ गया, बोला आज मेरा पैसा वापस नहीं दोगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अब उनके पिताजी चिंता में पड़ गए, बोले क्या करूं, घर से निकल पाऊं। तो इसी अवस्था में, इस प्रकार विपद अवस्था में ये छोटे बालक थे। उनका नाम बालक अवस्था में नाम था वासुदेव, उनका नामकरण वासुदेव के रूप ब्राह्मण ने किए थे। तो वासुदेव ने आपको देखा महाजन बैठा, बोला क्या मैं जाऊंगा नहीं, आज फास्टिंग करूंगा, मेरे पैसा वापस दो नहीं। तो उनके घर के सामने एक इमली के पेड़ था, कुछ इमली लेकर के उन्होंने कहे थे, इमली के बीज कुछ पड़ा हुआ था, तो इमली के बीजी एक मुट्ठी इमली के बीज उठाकर दे दी, बोले ले लो। वो बोल रहा था ये बच्चा है क्या इसे कह रहा है, बोले लो। तो उन्होंने उसको लिया, उसको देखा इमली के बीज नहीं था, वो तो स्वर्ण मोहर था, सोने की मोहर था। वो तो बोला मैं तो जितना दिया हूं उसके कई गुना ज्यादा ही है, बोले तुम ले जाओ। बोला हाँ ले जाओ, आपका ब्याज अगर मिल करके चक्रवर्ती तुम्हें जितना होगा उससे भी ज्यादा देता हूं, लेके जाओ उसमें एक मुट्ठी। तो उसके बाद में वो प्रसन्न होकर गया, उनके पिताजी आए, बोले मुझे मिल गया जितना मैं चाहता था, आपसे शुद्ध मूल्य मिला के उससे भी ज्यादा मिल गया, कैसे दे दिया उन्होंने दे दिया, वो कहाँ से लाया। वो बोला मैं उठा के दे दिया, सूख रहा था मिले के बीज उठा के दे दिया। तो ऐसे जब उन्होंने पढ़ने जाते थे तो उनको जो टीचर पढ़ाते थे तो उनको क्या पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाते थे वो पढ़ने थे तुरंत ही उसको बोल देते, याद कर लेते थे। उनको दोबारा बाकी सारे स्टूडेंट उनको पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि क्यों टाइम खराब करते हैं, दोबारा क्यों पढ़ाते हैं फिर उसको, जब मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ उसको। तो आश्चर्य होते थे उनके टीचर लोग। बहुत कम वयस में उनने विद्या प्राप्त कर ली, जो उनके क्षेत्र में जितने भी विद्या उपलब्ध था जो टीचर थे प्राप्त करके, तो उन्होंने ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए एक इस क्षेत्र में एक वैष्णव सन्यासी थे जिनका नाम था अच्युत प्रेख्य, उनका पास गए और उन्हीं से भगवत ज्ञान पढ़ने लगे। बाकी सारे जगह तो दूसरे पंथ के था, बौद्ध आदि के बड़े प्रचार था, उनको जाके पढ़ने लगे। और आकर के एक दिन एक हाथ में लाठी लेकर घूम रहे थे, तो उनके पिताजी ने बोले, वासुदेव लाठी लेकर क्यों घूम रहा है ना, मुझे वैष्णव धर्म को स्थापना करना है, वैष्णव धर्म स्थापना। बोले इसे थोड़ी ना होते वैष्णव धर्म स्थापना लाठी लेकर के, अरे ये जो प्रबल अभी ये धर्म प्रचार हो रहा है, बौद्धवाद, निरीश्वरवाद, निर्विशेषवाद, उसको कैसे तूने बच्चा के लाठी घूम रहे थे वैष्णव धर्म स्थापना करो, ऐसे ये थोड़ी है, बच्चा का खेल थोड़ी ना है। अब जैसे लगता है कि तू ये सूखा लकड़ी ले, लकड़ी से पेड़ उग जाएगा, ऐसी बात कह रहा है अपने। तो बोले पिताश्री मैं करके दिखाऊंगा ना। तो तुरंत उनके सामने जो सूखा लाठी लेकर घूम रहे थे, लाठी को मिट्टी में गाड़ दिए और वो पेड़ बन गया, अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर के बढ़ते गया, मुख्य बनने लगा। ऐसे कहते हैं कि एक मणिमंत करके सर्प था, वो सुना इस बात को, पिता पुत्र की बात को सुना, वो असुर था, वो बोला कैसे इसने, तो उन्हें आकर के बड़े विशैली सर्प था, पांच सिर वाले, वो आकर एक पेड़ को काटा, बोला पेड़ जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वासुदेव तो अमृत युक्त थे, उनके स्पर्श से, उनके दृष्टि से इस सर्प का विष का प्रभाव कुछ नहीं हुआ, वृक्ष बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। तो इससे उनके पिताजी ये निश्चिंत हो गए कि ये निश्चित रूप से एक अद्भुत कर्मा होगा, बहुत बड़ा प्रचार करेगा, आचार्य बनेगा, उनको समझ में आ गया। तो बहुत कम समय में उन्होंने अच्युत प्रख्य से जो भी उनसे पढ़ना था पढ़े। और इस समय में एक पंडित जो शंकर भाष्य के पंडित थे, उन्होंने आए थे इस क्षेत्र में, वो तो प्रचार कर रहे थे पूरी दुनिया में घूम करके, वो पता लगाए कि अच्युत प्रख्य अभी भी ये भगवतवादी हैं, साकारवादी हैं। तो उनका पास आए, उनके स्कूल में आकर के उनके पूरे ग्रुप के साथ आए वो पंडित, और आकर उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए उनको ललकारे। तो अच्युत प्रख्य को क्या करेंगे, जब आकर सामने बैठा उनके उनके विद्यालय में अगर पहुंच गया शास्त्रार्थ करने के लिए, वो हरिस्मरण करके बैठे, बोले क्या करूं। तो उनके साथ में उनके स्टूडेंट, उनके शिष्य वासुदेव बैठे हुए थे। तो जो उन्होंने जो इस युक्ति शुरू हुआ शास्त्रार्थ, ऐसे कहते हैं कि आसपास के गांव से हजार संख्या में लोग आए देखने के लिए, क्योंकि इसको बहुत सम्मान करते थे अच्युत प्रख्य को, यहाँ क्षेत्र के लोग उस उड़पी क्षेत्र में, और वो महान पंडित था। तो उन्होंने अपने ग्रुप के साथ जब आया साथ करने के बैठे, उन्होंने तीन दिन तक अपने मत की स्थापना किया, बड़े पंडित्य से उन्होंने स्थापना किया, और जितने भी लोग सुन रहे थे और पंडित थे, बड़े चकित हो गए उनके इस वर्चस्व को देख करके। लेकिन उसके बाद में अच्युत प्रख्य कुछ बोलने से पहले उनके स्टूडेंट कम उम्र वाले वासुदेव ने उन्होंने गुरु से बोले, गुरु जी मैं पहले ना, वो तो बोले कि मैं तो चाहता था कि आप ही बोलो, बोले उनसे आशीर्वाद लेकर के उन्होंने बोलना शुरू किए, और एक एक करके तीन दिन तक जितने मत उन्होंने स्थापना किए थे सारे मत को खंडित किए, सारे मत को खंडित किए, और ऐसे शास्त्र प्रमाण के द्वारा उन्होंने अपने मत को स्थापना किए कि बिल्कुल निरुत्तर रहे वो पंडित, उनको परास्त किए थे। तो उसी से वासुदेव की महिमा इस क्षेत्र में बहुत प्रचारित हो गया, प्रसारित हुआ, और कुछ ही दिन के बाद में उन्होंने संन्यास लेने के लिए विचार किए, अपने पिताजी के जाकर बोले, और पिताजी के एक तो पुत्र वो नहीं चाहते थे, उन्होंने बोले कि नहीं ये उम्र नहीं है, अभी घर में रह करके प्रचार प्रसार जो भी करना है करो, अब जब उम्र हो जाएगा तभी लेकर जाना। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट करते समय उनको प्रणाम किए, बोले बेटा मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तो प्लीज ऐसा मत कर, हमको छोड़कर मत जा, हमें वृद्ध होने जा रहे हैं, तू अभी बिल्कुल बालक अवस्था हूँ, तो हमको छोड़कर मत जा। जैसे उनके पिता ने उनको प्रणाम किए, रिक्वेस्ट किए, तो माधवाचार्य बोले पिताश्री आप तो मुझे मना तो कर रहे हैं कि मैं संन्यास लेने के लिए, लेकिन कार्य करते हैं कि जैसे मैं सन्यासी हूँ। बोले वो कैसे, बोले किसी परिवार में किसी वयस्क व्यक्ति जो गुरुजन व्यक्ति वो नीच व्यक्ति को प्रणाम करते नहीं है, कभी नहीं करते हैं, तभी करते हैं जब ये सन्यासी हो। ये सन्यास ले लिया हो तो प्रणाम कर, प्रणम्य है, नहीं तो प्रणाम में योग्य नहीं है। बोले आप मेरे पिता है, मैं आपके पुत्र हूं, छोटे हूं उम्र में, हर प्रकार से संबंध, आप मुझे प्रणाम करते हैं इसका मतलब मैं सन्यासी हो गया क्या? मुझे सन्यासी कर चुके हैं अपने, मुझे तले जाना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं? आपने अपने कार्य से प्रमाणित कर दिए। इस प्रकार करके अब पिताजी फंस गए और क्या करें। तो फिर माता जी के बोले, वो भी बड़े दुखी हुए, तो उनको भी समझाए, उनको समझा करके बहुत कम उम्र में उन्होंने जाके अच्युत प्रख्या से संन्यास लिए। संन्यास ले करके और प्रचार प्रसार में किए, अनेक प्रकार के बाधा विघ्न के साथ कई प्रकार के लोग, क्योंकि तभी बौद्ध मत और शंकर मत के बहुत प्रबलता था, तो हर प्रकार से लोग उनको रोकना चाहते थे, उनके प्रचार को बहुत बड़े षड्यंत्र उनके विरुद्ध में चला, लेकिन उन कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनके। ये सबको स्वयं वायु थे, महाबलशाली थे, तो सबको दमन करते हुए उन्होंने अनेक शिष्य स्वीकार किए, अनेक लोग बड़े बड़े उनके प्रभाव से, उनके वक्तव्य, उनके पांडित्य से उनके प्रति समर्पित हुए। तो फिर उन्होंने बोले कि मुझे जो भाष्य लिखे थे उन्होंने गीता के ऊपर, तो गीता के भाष्य के ऊपर बोले मैं लेकर जाऊंगा व्यासदेव जी से, उसको कन्फर्म कराऊंगा। बद्रीनाथ के यात्रा में निकले कर्नाटक से, तो पैदल में जाना है बद्रीनाथ, तो उनके साथ में कुछ ही सी शिष्य थे उनके, तो उनको लेकर के साथ में उन्हें चलते चलते कई महीने लगे होंगे चल करके, तभी जमाने में, आजकल स्थिति में इतने एडवांस्ड एज में को बद्रीनाथ जाते हैं, आप लोग में से कोई गए होंगे, जाते समय में भी इतने लगता है कि और फिर वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, सचमुच नारायण का स्मरण होता है जाते समय में, और पहुंचने के बाद क्या होगा। तो उस जमाने में तो कोई बद्रीनाथ जाता था तो बद्रीनाथ जाने के विचार क्या, वो जीते जी श्राद्ध कर देता था अपना, क्योंकि आशा नहीं था वापस आऊंगा भाई, पहले से करके जाता हूँ आशा छोड़ करके। तो लेकिन उन्होंने गए, उनके साथ उनके कुछ सेवक भी गए थे, पैदल में गए बद्रीनाथ क्षेत्र, इतने द्रुह बद्री क्षेत्र को जाकर पहुंचे नारायण दर्शन के, और कहते हैं कि वहां 48 दिन तक बद्री नारायण के गृह में रहे, तभी जमाने में 48 दिन का फास्टिंग करके मौनव्रत से वहां रहे, उसके बाद उनको दर्शन हुआ, उनको सिफात, बोले मैं जा रहा हूँ व्यासदेव से मिलने के लिए। हम लोग आजकल बद्रीनाथ जाते हैं, जहाँ पर अलकनंदा के तट पर जो बद्री मंदिर है वहीं जाते हैं, और थोड़े ऊपर एक व्यास गुफा, गणेश गुफा है छोटा बना हुआ है, बस गुफा पत्थर में बना हुआ, कुछ है ही नहीं। जो शास्त्र में वर्णन होता है, जो सम्य प्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर, अभी भी व्यासदेव मौजूद है वहाँ, क्योंकि सप्त चिरंजीवी से एक है, वो कल्प तक रहेंगे, और उनके साथ अनेक और ऋषि मुनि भी रहते हैं उस आश्रम में। तो हम तो उसको कभी देखे नहीं, इतने सुंदर हो, वहाँ कोई पेड़ पौधा भी होता नहीं ज़्यादा, बर्फ गिरता रहता है, लेकिन इतने सुंदर वन, बद्री माने बर्फ, बट बर वृक्ष, बेर क्या होता ना, बेर के फल, बेर, और यहाँ बेर फिर कुछ ही नहीं है, पेड़ नहीं है, पता नहीं कुछ उसका और अर्थ होगा, जो भी हो, लेकिन वो उन्होंने उनके सेवकों को छोड़े, बोले मैं जा रहा हूँ व्यास, मतलब कहाँ ना आप लोग नहीं जा सकते, और उत्तर दिशा को गए, वो तो वायु थे, वहाँ से जंप किए, जंप करके चढ़ गए हिमालय के ऊपर, कहाँ गए पता नहीं, और उन्होंने वेट किए, गुरु जी आए करके, आए नहीं, वापस आ गए, बोले पता नहीं गुरु जी कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता कहाँ चले गए, वो जाके व्यास आश्रम में रहे, उनको पता था कहाँ व्यास देवी का आश्रम, वहाँ जा करके रह करके व्यासदेव जी को उनको भाष्य सुनाए, व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिए और उनके टीका को स्वीकृत किए, अपने साइन किए कमेटी भाष्य में, तो उसको लेकर के आए थे। इसमें माधव भाष्य में व्यासदेव के साक्षर है, हस्ताक्षर है, तो इसलिए डायरेक्ट व्यासदेव के शिष्य है माधवाचार्य, डायरेक्ट डिसिपल, हमारे परंपरा में इसलिए ब्रह्मा, नारद, व्यास और माध्व। तो इसलिए सख्यात व्यासदेव जी के डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में उनसे आपने पढ़ करके भाष्य सुना करके प्रसन्न करके वो लेकर आए, सम्मति प्राप्त करके वहाँ करके व्यास की कृपा से तो और ही उनका तेज विद्वान विद्वत्ता और बढ़ चुका था। आकर के और प्रचार के वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे। तो उन्होंने इस प्रकार प्रचार प्रसार करने के बाद दूसरे बार भी उन्होंने फिर बदिक गए थे, सेकंड टाइम गए थे, क्योंकि जो भाष्य लिखे वेदांत सूत्र पर उसको भी अथराइज्ड करने के लिए व्यास जी के पास गए थे। दो बार व्यास जी से मिले जाकर के बद्रीनाथ, दो बार गए। तो आकर के उन्होंने ऐसे प्रचार किए। दूसरा बार व्यास आने के बाद जो प्रचार प्रसार किए थे तो उन्होंने उडुपी को अपने हेडक्वार्टर बनाए, क्योंकि अनंत स्वरूप की कृपा से उनको प्राप्ति हुआ था, वहीं पर अपने हेडक्वार्टर बनाए और वहाँ पे अपने अनेक फॉलोअर्स हो चुके थे शिष्यगण, तो उनसे 8 सन्यासियों को चुन करके 8 मठ बनाए, अष्टमठ स्थापना किए थे। एक घटना एक बीच में हुआ था, उन्होंने एक समय वो द्वादश स्तोत्र रत्न जब रचना कर रहे थे, एक समय आधी रात में उठ करके समुद्र तट पर था, समुद्र तट में चले गए, घूम रहे थे। रात में याद आता स्तोत्र रचना करते श्लोक बोलते बोलते समुद्र तट में घूम रहे थे, तो हठात देखे कि भोर भोर समय में आंधी तूफान बवंडर उठने लगा, और दूर से देखे तभी जमाने में बिजनेस होता था, रोड तो था नहीं, जलपथ से बिजनेस हुआ करता था मुख्यतः। तो एक बड़े बिजनेसमैन जो उस दिशा से पाकिस्तान साइड से द्वारका साइड से वो समुद्र पथ पे अपने नौका लेकर जा रहे थे, बड़ा बोट उनको पोत लेकर जा रहे थे जल जहाज लेकर के, तो वो बवंडर के चक्कर में आ गया, घृणी वात्या के चक्कर में। वो बेचारे चित्कार कर रहे थे, मर जाएंगे सारे माल, मतलब डूब जाएगा सिर्फ, डूब जाएगा सिर्फ, ये प्रकार के उनके करुणा चित्कार सुने और देखे कि बिल्कुल बवंडर घूर्णी वात्या के चपेट में आ चुका है वो जहाज। तो वासुदेव ने उनको देख करके, अभी उनका नाम संन्यास लेने के बाद पूर्ण प्रज्ञा हो चुका था, तो देख करके माधवाचार्य उनको दर्शन करके उन्होंने अपना गामछा हिलाए, गामछा हिला करके उनको इशारा किए इधर, तो देखे तो एक सांस खींचे और सारे घूर्णी वात्या उनके अंदर चला गया, सारे वायु जो साइक्लोन था साइक्लोन को खींच लिया अपने अंदर, वो स्वयं वायु है खींच लिए, और वो जहाज को किनारे ले आए। जहाज किनारे आया तो जहाज में जितने भी कैप्टन और जितने भी कर्मचारी थे सब बोले कि हमारा जीवन प्राप्ति हुआ, हमारे धन रत्न से हुआ, जहाज बच गया। उतर के आकर के उनके चरण में गिरे, बोले धन्य है आप, अद्भुत है यह साइक्लोन को देखते देखते हाथ हिलाते खींच लिए, बंद करा दिए, हमको अपने बचा लिए। वो आकर बहुत कृतकृत्य होकर के उनको चरण में गिर करके उनको सम्मान किए और बोले कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, क्या भेंट देंगे हमारे पास, हम जहाज में चलिए, हमारा जो भी आप जो चाहेंगे हम देना चाहते हैं। तो उनका जहाज में गए, जाकर देखे कई चीज था, नाना प्रकार के धन रत्न, नाना प्रकार काम था, और एक बहुत बड़े मिट्टी का ढेल था, बहुत बड़ा मिट्टी का खंड था। तो उसे ये क्या है, बोले ऐसा है कि हम जो आ रहे थे कराची साइड से द्वारका के प्रांत में, वो एक साइड दबने लगा पानी में, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ से एक बहुत बड़े मिट्टी के खंड उठाए, द्वारका बन से उठाकर लोड कर देते, जहाज बैलेंस होगा चलेंगे। बोले अच्छा द्वारका से उठा के लाए ना, हाँ रुक्मणी बन से उठा के लाए थे। बोले बस मुझे यही मिट्टी का खंड दीजिए। बोले ये मिट्टी क्या होगा, ये तो बैलेंस करने के लिए वहां से मिट्टी लेकर आए थे, जहाज पहुंचा उसे फेंक देंगे हमने। बोले आपके जो फेंकने के लायक तुच्छ वस्तु मिट्टी के आप लाए थे वही मुझे दे सकते हैं ना, अब तो हमारा जहाज पारे होकर आ गया, हम आप लेना चाहते लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं मिट्टी क्या, लेकिन ना मुझे वही चाहिए ना, वो इतने भारी मिट्टी खंड हम तो पुल क्रेन लगाकर उठाए थे, तब जमाने में जो क्रेन होता था उस समय उठाकर लोड किए थे, और तो 500 आदमी चाहिए उसको उठा नहीं सकते, फिर पुली लाना पड़ेगा, पुली उठाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इसको ले लो आपका कुछ ना ना मिट्टी लेने में हमारा क्या पड़ जाए, ले जाइए आप लेना है तो, लेकिन कितने लोग बुलाना, कोई लोग बुलाना नहीं पड़ेगा। और स्वयं अकेले गए, जो 100 आदमी भी उठा नहीं सकते थे उसको अकेले अपने हाथ में उठाकर ले लिए, विशाल मूर्ति का खंड, मिट्टी खंड को उठा लिया, क्योंकि वो जानते थे मिट्टी क्या है। जब उनको पता चला द्वारका बन से लाए थे, वही गोपी चंदन के विशाल खंड था, उसको उठा करके लेकर आए, आश्चर्य सब देख रहे थे, लेकर के गोद में लेकर आए और समुद्र किनारे वो उससे मिट्टी उठा के ला रहे थे। एक खंड टूट के गिरा, एक खंड टूट के गिरा तो उसमें ऐसे एक विग्रह निकला, वो श्री बलराम जी का विग्रह था। श्री बलराम जी के इस विग्रह को वहीं जहां पर गिरे वहीं स्थापना किए, बोले आप यहीं समुद्र किनारे अपने प्रकट है तो वहीं उनको स्थापना किए, यहाँ के सुब्रमण्यम मंदिर था वहीं पे बलराम जी की स्थापना किए, और बाकी जो बचा हुआ खंड को वो फिर लेकर के उठा करके अपने मठ स्थान पर वहां लेकर के, यहाँ ब्रह्म सरोवर था, ब्रह्म सरोवर में उनको डाले तो मिट्टी मेल्ट हो गया तो उसके अंदर और एक मूर्ति निकला, क्योंकि कृष्ण बलराम के दोनों के विग्रह था तो कृष्ण मूर्ति निकला बाल कृष्ण के रूप। वो विग्रह को जो प्राप्त किए मिट्टी के अंदर से तो उनको उन्होंने स्थापना की ये 8 मठों के बीच में मध्य स्थान में। तो इस अत्यंत सुंदर कृष्ण के बाल मूर्ति को, बाल रूप को उन्हें स्थापना की जो विग्रह प्राप्त हुए। इस मूर्ति का के बारे में किंवदंती इस प्रकार है कि ये मिट्टी के अंदर कैसे आया कि उनको पता था मध्वाचार्य को भगवत के पास। ऐसे कहते हैं कि जब भगवान ने कृष्ण बलराम द्वारका में थे, वो तो गए फिर आए नहीं, वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, बस द्वारका से फिर द्वारका लीला अंत करके अपने लीला समाप्त की। तो एक समय जब द्वारका से सारे द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में, जो पहले कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय आए थे स्नान करने के लिए, उस समय ब्रज से भी सारे गोप गोपियां सब लोग गए थे ब्रजवासी, उनको स्नान करने का कोई मतलब नहीं था, उनको भेंट होंगे कृष्ण बलराम इसी आशा लेकर के वो गए थे ब्रजवासी। तो भेंट हुआ था यहाँ नंद जसोदा और गोपी गए थे, नंद जसोदा को अब राम कृष्ण मिले, कृष्ण बलराम बड़े दिन के बाद और गोपियों से मिले, तो जसोदा के गोद में जाकर कृष्ण बैठ गए और जसोदा के साथ कृष्ण का जिस प्रकार के वात्सल्य भाव दुग्ध झरने लगे उसको देवकी पहली बार देखी, क्योंकि वो तो बेचारी जन्म हुआ तो उसी दिन रात रात तो ट्रांसफर हो गए थे, और बाद में भगवान के शैशव उनके जो वात्सल्य भाव जो शिशु लीला बाल्य लीला वो तो देवकी माता देखी नहीं, वो तो जेल में रही। तो पहली बार जसोदा और कृष्ण का जब आच्छल्य रस को उन्हें दर्शन किया वहीं पे कुरुक्षेत्र में, तो उनका मन में ये उत्कट भावना जागृत हुआ, हाय हाय मैं कितने अभागिनी हूँ, मेरे पुत्र का ये बाल स्वरूप लीला को मैं नहीं दर्शन कर पाया, जसोदा के प्रति कितना गाढ़ प्रेम है, क्या है, मेरे से तो ऐसा ही नहीं है। तो जो वापस गए उनके मन में बड़ा लगा उसको, तो जिसे वापस गए द्वारका कुरुक्षेत्र से होकर के, तो एक दिन कृष्ण को बुलाकर बोला बेटा एक बात मेरा मन में बहुत आशा है आप पूरा करो। ना क्या माँ बोलो ना, मैं उस दिन जो देखा जसोदा के साथ से तुम्हारा जो लीला जो संबंध है वो जो आप बाल रूप में एक बार देखना चाहता हूँ, मैं तो इसको वंचित रह गया, तो कृपा करके मुझे इस बाल रूप मुझे दिखाओ, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, बड़ा अद्भुत था। तो माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान ने और दोनों भाई ने बोला, हम दोनों तो एक साथ में रहते थे, कैसे नटखट करते थे बालकपन में रोहिणी और जसोदा के साथ, उनके नमूना प्रस्तुत करने के लिए माँ जो बोल रही है तो बन गए भगवान। भगवान तो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते, तो उनने इस बाल रूप स्वीकार किए थे। माँ जसोदा दधि मंथन कर रही थी और नटखट करके मटका तोड़ करके माँ से स्तनपान करके और बिल्कुल हाथ में दधि मंथन दंड और रस्सी लेकर खड़े हैं ऐसे नटखट बालक के रूप में, और माखन खाए ऐसे दूध लगा हुआ है दही दूध लगा हुआ इस प्रकार रहा। इस प्रकार एक बालक नटखट बालक के रूप में खड़े हैं। तो इसी रूप को जब भगवान ने दिखाया माँ को, और माँ तो बिल्कुल मुग्ध चकित हो गई। केवल माँ नहीं देखी थी, बाकी सारे उनके रानियां थी वो भी देख रहे थे, वो भी देखे बोले रे हमारे पतिदेव अपने चाइल्डहुड में ऐसे ही थे, हम तो एल्बम देखे नहीं थे जब पहले देखे तो कहने को पतिदेव बचपन में ऐसे थे करके, तो इतने वो भी महान आकर्षित मुग्ध चकित हुए, तो उनमें श्रेष्ठ पाठ महिषी रुक्मिणी जी उस रूप को बोले क्षमा कर मुझे इस विग्रह जो बाल स्वरूप देखा मैं उसको सेवा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने फिर बोले ठीक है, तो उनको रुक्मिणी देवी अपने सखियों से सेवा करती थी और बाकी बलराम के विग्रह जो थे उनको बलराम के सखियों सेवा करते थे रुक्मिणी वन में। तो इस प्रकार ये विग्रह इसे प्रकट हुआ था, द्वारका वन में सेवित हो रहा था। और अंत में जब द्वारका समुद्र में जाता है और द्वारका लीला अंत होता है, तो अर्जुन जब गए थे तो उस विग्रह को ला करके रुक्मिणी वन में रख दिए थे। तो वही समुद्र किनारे रुक्मिणी वन का जो खंड था जहाँ से गोपीचंदन प्राप्त होता है, उनको नहीं पता था, वो तो मिट्टी के खंड करके लेकर आए थे, माधवाचार्य भगवत कृपा से उनको ज्ञान था, उनके विग्रह प्राप्त हुआ था। तो ही भगवान के निज स्वरूप बाल स्वरूप विग्रह को उन्होंने वहाँ स्थापना किए। आज भी वो विग्रह पूजित हो रहा है उसी उडुपी में, उसका नाम से प्रसिद्ध है कृष्ण, उडुपी कृष्ण के नाम में प्रसिद्ध है। आप लोग बहुत दर्शन किए होंगे, हाँ नेट में भी दर्शन कर सकते हैं डाउनलोड करके, उडुपी कृष्ण प्रसिद्ध है। ये उडुपी कृष्ण इतने प्रभावशाली भगवान है, तो उनको तो बिल्कुल पूजा हो रहा है उनका। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण करते करते उडुपी पहुँचे थे दक्षिणात्य में, तो हाँ उनका तर्क हुआ था, वो तो तत्ववादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले हमारे गुरु की हम फॉलो कर रहे हैं, बोले ठीक है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने माधवाचार्य से, माधवाचार्य के जो मतवाद था, यद्यपि तत्व के रूप में उसको ग्रहण नहीं किए, प्रेम था नहीं उसमें, लेकिन उनमें दो चीज चैतन्य महाप्रभु भी माधव संप्रदाय से ग्रहण किए, दो शिक्षा। एक तो है अद्वैतवाद का निरसन, अद्वैतवाद का खंडन, सीधा सीधा खंडन। उन्हें बड़े कट्टरवादी थे, क्योंकि वो थे अद्वैत मतलब एक। माधवाचार्य के चित्र देखेंगे, उनका परिचय ही से दो अंगुली, बोले हम दो, इसलिए द्वैतवाद की प्रतिष्ठा किए थे उन्होंने, द्वैतवाद, ये अद्वैत द्वैत, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज भी उडुपी में जाएंगे संध्या आरती के बाद, उनका ये परंपरा रहा, उडुपी मंदिर के सामने उनके जो सन्यासी होंगे, मठ के पूजक जो सन्यासी जिसका परिवार चलता होगा, वो बैठेंगे, कुछ लोग बैठेंगे, कुछ संस्कृत में कुछ वाद विवाद करते हैं, उनका परंपरा मेंटेन करते हैं, अद्वैतवाद खंडन, ये महाप्रभु ने उनसे लिए थे। और दूसरा कृष्ण विग्रह को सत्य मानना, कृष्ण विग्रह को सत्य विग्रह मान करके पूजा करना, ये जो विग्रह प्रति जो निष्ठा, पूजा निष्ठा, इस मत को ग्रहण किए थे महाप्रभु, ये दो भाव लिए थे उनसे। तो इल्म बिल्कुल सत्य विग्रह करके उनको सेवा करते थे माधवाचार्य स्वयं। और उन्होंने आज उनका तिरुभाव तिथि है, तो उनका तिरुभाव के विषय में थोड़ा चर्चा करना उचित है। जब उन्होंने अपने लीला स्मरण करने का समय आया, तो उन्होंने ये आठ मठ जो स्थापना किए थे, आठ मठ के जो सन्यासी है उनको सब बुलाए, ऋषिकेश तीर्थ आदि आदि सबको बुला कर इकट्ठा करके एक एक विग्रह सबके दिए, पूजित विग्रह, किसी को राम विग्रह, किसी को सबके एक एक उनके मठ का पूजित विग्रह दिए, बोले उनको अब सब पूजा करें। तो बोले गुरुजी हमारा के पूजा करने का योग्यता है, बोले योग्यता नहीं है मैं देता क्यों, योग्यता है इसलिए मैं दिया, आप प्रैक्टिस करो और पर्याय के अनुसार इस मुख्य विग्रह जिसको मैं स्थापना किया हूँ उसी की सबको आप पूजा करेंगे, सभी को दो दो साल, दो दो साल सबको पड़ेगा, 16 साल में एक बार पर्याय आता है, सबको दो दो साल मिलता है, प्रचार बाकी सब प्रचार करो, बाकी 2 साल पर्याय वहीं रह करके उनकी सेवा पूजा करो। तो अभी भी इसी प्रकार से बड़े भव्य रूप से उडुपी का पूजा होता है, डिटेल पूजा, जब भी जाए सुबह 4 बजे से लेकर के रात तक इतने विशेष रूप से पूजा, और उनके पूजा केवल सन्यासी ही करेंगे और नहीं कोई कर सकते, सन्यासी पूजा करेंगे। और उनका सन्यास कैसे होता है, सन्यास लेने से शिखा सूत्र त्याग, जनेऊ और शिखा कंठी ऐसे उतार देते हैं सन्यास करके। हम लोग अल्टर में जाएंगे तो जनेऊ पहन करके जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जाने नहीं देंगे, हैं तो जनेऊ संस्कार नहीं हुआ तो पवित्र पहना नहीं तो कैसे आ सकता अल्टर में, और उनका पवित्र पहना कैसे आ सकता अल्टर में, उसको निकालो वो पवित्र निकाल करके वहां जाना होता है पूजा करने के लिए संन्यास लेकर के, अरे हमारे पहन कर जो भी हो। तो वहाँ प्रसिद्ध आज भी हैं, बड़े डिटेल भव्य रूप से पूजा करते हैं प्रिया के अनुसार, और उनको उपदेश दे करके उस विग्रह पूजा के दायित्व दे करके उन्होंने एक समय बोले मुझे अभी समय हो रहा है, मैं थर्ड टाइम मुझे जाना है बद्रीनाथ, बोले व्यास जी के पास मुझे जाना है, और इस बार मैं जाऊंगा फिर आऊंगा नहीं ये बताए, बोले उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। तो सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे शिष्यों को बुलाए, बैठ करके उड़प क्षेत्र में बैठ करके उन्हें उपदेश दिए। बहुत उपदेश देने के बाद में तब ऐत्रीय उपनिषद का कुछ उसको व्याख्या करने लगे, पढ़ाने लगे। जब व्याख्या कर रहे थे तो आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि किए उनके ऊपर में, तुलसी माला पुष्प वृष्टि किए, और सब जय जयकार कर रहे थे कि साक्षात स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हो रहा है, देव वृष्टि पुष्ट करे, इतने सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करते थे, पुष्प वृष्टि हो रहा था, और सारे शिष्यों ने बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे। सबको लगा कि साक्षात वैकुंठ में सब पहुंच चुके हैं, पूरा वैकुंठ वातावरण था, पूरे क्षेत्र को वैकुंठ वातावरण बना दिए साक्षात। इस प्रकार शास्त्रार्थ अर्थ करते करते और देवताओं सब सुन करके प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते करते माला दे रहे थे, सभी लोग बैठकर सुन रहे थे, करते 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 चुप हो गए। पुष्प के ढेर में, स्वर्गीय पुष्प के ढेर में, पारिजात आदि पुष्प के ढेर में, बिल्कुल पुष्प के ढेर के मृत्यु जब गए थे, तो अंततः धीरे धीरे उनका शब्द बंद हो गया। तो उनके शिष्यगण उठ करके दौड़ कर जो देखने लगे क्या हुआ, और जाकर फूल को निकाल कर देखे कि है ही नहीं गुरु जी, अद्भुत वहीं से प्रकट हो गए, अदृश्य हो गए, वायु तो ऐसे अदृश्य ही होता है। तो इस प्रकार उन्होंने केवल कहे थे मैं अंतिम जाऊंगा फिर बद्री क्षेत्र, बद्री का आश्रम, और मैं गुरु जी व्यास देव के पास रहूंगा, उनके साथ रहूंगा, ऐसे कहे थे उन्होंने। तो सभी लोग ने बोले वो तो कहे थे जाएंगे तीसरी बार, वहीं रहेंगे और आएंगे नहीं, तो इसलिए माना जाता है वो अदृश्य रूप में अब भी व्यास देव जी के साथ हैं, वहीं हैं, लेकिन उनके जो शिक्षा, उनके जो भाष्य, उनके जो उपदेश वो छोड़ गए, जो आज संपूर्ण वैष्णव जगत के लिए बहुत बड़े उपहार है, जिनको लेकर के विशेष करके हमारा ये जो कोड़िय संप्रदाय जिनके शुरुआत श्री माधवेंद्र पुरीपाद उन्हीं संप्रदाय से संन्यास लेकर के शुरुआत किए थे, यद्यपि उस उनके साथ तत्व था प्रेम नहीं था, लेकिन माधवेंद्र पुरी उन्हीं से ही दीक्षित होकर के फिर प्रेम को प्रकाश किए थे, जिसके बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वही संप्रदाय में हुए और अपने मतवाद प्रकट किए। जो जो जितने अलग अलग वैष्णव के जो चार संप्रदाय है, चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय मध्वाचार्य के है, उनने जो मतवाद प्रतिष्ठा किए थे, सारे मतवाद को ले करके, अपने मत को लेकर के एक अभिनव मत श्री मन महाप्रभु जो प्रतिष्ठा किए थे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये विशिष्ट अद्वैत द्वैत और द्वैताद्वैत शुद्ध द्वैत, ये सबसे परे अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये अचिंत्य भेदाभेद को वर्णन श्रीमन माधवाचार्य भी कहीं कहीं अपने रचना में किए हैं, वो जानते थे, लेकिन उसको प्रकट पूरा नहीं किए थे, क्योंकि एक बार ऐसे वर्णन होता है कि महाप्रभु के प्रकट होने के 200-300 साल पहले श्री माधवाचार्य जब जा रहे थे तीर्थ भ्रमण में और नवद्वीप गंगा किनारे होकर जा रहे थे, वहां भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उनको दर्शन दिए थे, दर्शन देकर उनको बोले थे यू आर डूइंग गुड, आप जाओ ऐसे प्रचार करो, लेकिन मैं आपसे मत लेकर प्रचार करूंगा अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तुम अभी इस बात को किसी को नहीं बताना, गुप्त रखना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने नवदीप परिक्रमा खंड में महात्म ये बात को प्रकट किए हैं कि सारे आचार्य गए थे, सब आचार्यों को मिले थे महाप्रभु, अपने प्रकट होने से पहले श्री मध्वाचार्य को मिले थे। तो इस प्रकार हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य माधवाचार्य, जिन्होंने ऐसे ही शास्त्र आलोचना करते करते देवताओं को प्रसन्न करते, देव पुष्प से ढेर के अंदर से अदृश्य होकर के अपने गुरु प्यासदेव जी के पास चले गए। इसी माना जाता है बद्री क्षेत्र में वो भी माधव हैं, माधवाचार्य। तो ही माधवाचार्य जी उडुपी कृष्ण का प्रतिष्ठाता प्रसिद्ध। आज भारतवर्ष में उडुपी कृष्ण बड़े प्रसिद्ध है, सबसे रिच माना जाता है, इतने लोग उनको धन रत्न देते हैं। और ये उडुपी कृष्ण का भक्तवत्सलता भी बड़े प्रबल है, इसलिए वो ज्यादा उनका नाम बन गया। एक उनके भक्त थे कनकदास करके, वो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उनको मंदिर में जाने के लिए प्रवेश नहीं किए, दिए नहीं। तभी कट्टर ब्राह्मणवादी थे वो लोग, सतत्ववादी। तो उन्होंने बड़े नम्र थे, भक्त थे, वो मंदिर के पीछे खड़े रहे, अपने भीख मांग करके कुछ चावल लाए थे, उसमें कुछ खीर बनाए। बोले, ठाकुर मैं तो तुझे भोग लगाऊंगा और मुझे तो घुसने नहीं दिए, अगर तू मेरा हो मैं तेरा हूँ, तुम मेरे ओर मुंह करो और खुद छेद करो, मैं आपसे भोग लगाऊंगा और मैं आपको दर्शन करूंगा। तो इसे आपने बैठ कर अकेले अपने खीर बनाकर कर रहे थे, भिखारी के रूप में थे। भगवान ने सुबह पूजा पूजी कर रात को शयन करके गए थे वो लोग, सब सन्यासी लोग। और रात में भगवान ने उलट हो गए, पूर्व मुखा थे, उलट करके इधर पश्चिम मुख होकर देखे विग्रह, अपने आप पोजिशन चेंज करके और दीवार में एक छेद कर दिए। आज भी वो छेद है, कनक कंडी बोलते हैं, दीवार में इतने बड़े होल कर दिए और अपने भक्त को देखने लगे दूर से, और वहां से भोग लगाए, उनका खीर खाए, जो बना के दिया था खिचड़ी या खीर जो बनाया था उसको खा रहे थे। और सुबह आकर पुजारी लोग डोर खोले, देखते हैं कि विग्रह मुड़े हुए, चेंज होंगे। आप बताओ, कृष्ण बलराम डिटी अब मोड़ कर इधर दीवार की तरफ मुड़ कर खड़े रहे, क्या होगा? वे हलो, तो वही हाल हुआ। छोटी सी, बहुत छोटी सी मंदिर है, आप उड़ भी गए होंगे, रे बाप रे बाप, घुस करके इसे झुक करके जाना हो, घुस करके इससे छोटी सी विग्रह छोटी मंदिर में, लेकिन उसका अंदर भूल गए और वहां से डायरेक्ट मोड़ करके बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ मुंह करके इस कनकदास को देखने लगे, दीवार को छेद करके। आज भी विग्रह ऐसे मुड़े हुए देखते हैं, सामने दरवाजा पर जाएंगे, सामने से दर्शन नहीं होता, पीछे से दर्शन है। ऐसे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उड़ुपी में, कृष्ण उड़ुपी कृष्ण रूप में प्रसिद्ध है, और प्राय कृष्ण भक्तगण वहाँ अवश्य दर्शन जाते हैं, दर्शन करने के लिए उड़ुपी कृष्ण को प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से माधवाचार्य की आज तिरुभाव तिथि है, तो हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, इसलिए हम उनको श्री चरण में, उनके श्री चरण में आज अपना हृदय से श्रद्धांजलि ज्ञापन करना चाहेंगे। यही प्रार्थना करेंगे कि जितना निष्ठा, जितने भक्ति के प्रचार, जिस प्रकार के उनका भगवत विश्वास और जिस प्रकार के मत के बिल्कुल हम भगवान के है, जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान है, जीव जीव है, इस प्रकार उनके दृढ़ मत धारणा और भगवान के विग्रह में जो सत्य भगवान है इस मान करके उनको जो पूजा, इस प्रकार से निष्ठा जिन्होंने प्रचार की और दिखाए, तो इस प्रकार के उनकी कृपा से अगर हमको प्राप्त हो तो हमारा जीवन भी सफल सुलभ होगा। श्री माधवाचार्य जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रमाण।